SBS हिंदी हमारी कहानियाँ फेसबुक पर।
आज मैं आपको मिलवाऊंगा एक खास मेहमान से। यह मेहमान मेरी एक पुराने मित्र हैं और पहली भारतीय महिला जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में अचानक हुई सत्ता परिवर्तन को अपने कैमरे में कैद किया। इन्होंने चारों तरफ होने वाली गोलाबारी के बावजूद 10 दिनों तक अपनी रिपोर्टिंग को जारी रखा। आइए स्वागत करते हैं द प्रिंट की डिप्लोमेसी एडिटर नैनिमा बासु का। मैं नैनिमा का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतना बिजी होने के बावजूद हमारे साथ अपने अनुभव शेयर करने के लिए वक्त निकाला है। नैनिमा, हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। नैनिमा, आप इकलौती जर्नलिस्ट थी, विमेन जर्नलिस्ट थी जो इंडिया से इस क्राइसिस, अफगानिस्तान क्राइसिस को कवर करने के लिए गई थी। तो आप ने जाने से पहले ये सोचा था कि सिचुएशन वहां बहुत खराब हो जाएगी?
जी देखिए, जब मेरा वहां जाने का प्लान बना, मेरे एडिटर के साथ मैंने डिस्कशन करी, प्लान उस दिन बना जब कांदाहार में इंडियन कॉन्सुलेट ने अपना एम्बेसी, अपना कॉन्सुलेट बंद कर दिया, और तब लगा। और मेरे अपने सोर्सेज जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया में है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, तब हमें ये जर्नलिस्ट को पता चला कि सिचुएशन अफगानिस्तान में बहुत ही डेटीरियोरेट होने वाला है। उन्होंने कंदाहार, पहले तो जलालाबाद और हेरत तो बंद हो ही चुके थे 2020 में, जबकि उन्होंने कोविड का रीजन दिया था, तभी भी पता था कि ये सिचुएशन के चलते हुए वहां पे जो इंक्रीजिंग तालिबान इन्फ्लुएंस बन रहा है उसके चलते हुए उन्होंने बंद किया था। पर बोला गया था कि ठीक है, कोविड का सिचुएशन खराब है इसलिए बंद कर रहे हैं। तो कंदाहार जब बंद हुआ तब पूरी तरह से ये पता चला कि सिचुएशन और इंटेलिजेंस इनपुट्स जो उनको मिल रही है वो ये है कि कभी भी अटैक हो सकता है किसी भी डिप्लोमेट्स में, एम्बेसीज में। और इंडियन एम्बेसी पहले भी काबुल में 2008 में अटैक एक बार हो चुका है। तो वैसे भी यूएस ट्रूप्स विड्रॉल हो रही थी, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अनाउंस भी कर दिया कि 9/11 तक वेट नहीं करेंगे, 31 अगस्त तक सब हो जाएगा।
तो आपको डर नहीं लगा क्योंकि इंडिकेशन तो काफी पहले से ही आना शुरू हो गए थे कि शायद वहां पे सिचुएशन खराब हो रही है, तालिबान जो फाइटर्स हैं उन्होंने शहरों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे आपने बताया कि कांधार की हमारे काउंसलेट को भी बंद कर दिया गया, बाकी शहरों में भी फाइटिंग शुरू हो गई थी, तो आपको कहीं डर नहीं लगा कि शायद मैं जब वहां जाऊं तो सिचुएशन और खराब हो सकती है?
नहीं देखिए, सिचुएशन और खराब हो जाएगी ये तो हमें पता था, बट शायद ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी काबुल उनके कब्जे में आ जाएगी। रहा बात डर की, साहिल आपको पता है, आप भी जर्नलिस्ट है, अब जो काम करनी होगी वो तो करनी होती है, एंड इट वाज काइंड ऑफ अ चैलेंज टू आल्सो अंडरस्टैंड कि वहां पे लोगों में क्या मची हुई है, जो दहशत फैली हुई है।
जी, आप ह्यूमन एंगल पे फोकस करना चाहती थी और विमेन इश्यूज पे फोकस करना चाहती थी, तो नैनिमा आपने क्या देखा वहां पे जब आप वहां पे मेरे ख्याल से 8 दिन के लिए थी?
जब मैं पहुंची 8 अगस्त को वहां पे, तो लगा कि काबुल तो काफी शांत सा है। डर ऑफ कोर्स था क्योंकि तभी भी न्यूज आ रही थी और ये तब तक कंफर्म हो चुका था कि 2/3 ऑफ अफगानिस्तान वाज ऑलरेडी अंडर तालिबान्स कंट्रोल। बट कहीं ना कहीं एक ये होप था लोगों में कि ठीक है, प्रोविंशियल कैपिटल्स जा रहे हैं बट काबुल तक नहीं आ पाएंगे, अशरफ गनी गवर्नमेंट कुछ करेगा, अफगान फोर्सेस कुछ करेंगे, तो एक होप था। और तब एक यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी आई थी कि इट विल बी अबाउट 90 डेज व्हेन दे कैन एंटर काबुल। तो लोगों में एक कहीं ना कहीं एक आशा थी कि नहीं, ऐसा कुछ होगा नहीं, काबुल में तो कुछ हो ही नहीं सकता। बट जैसे कि मैंने आपसे कहा और मैंने अपनी रिपोर्ट्स में भी लिखा है, 8 से लेके 15 तारीख तक सब कुछ एकदम से बदल गया। आई डोंट थिंक इवन इंडियन गवर्नमेंट वॉज अवेयर, एनी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर दैट मैटर, देवर अवेयर, क्योंकि 14 तारीख को, जैसे कि आपको पता है, प्रेसिडेंट घनी ने एक एड्रेस टू द नेशन दी जहाँ पे उन्होंने बोला सब कुछ बहुत अच्छा है, मैं तो काबुल को फॉल नहीं होने दूंगा, अफगान फोर्सेस को मैं और बूस्ट करूंगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 15 तारीख को हमने देखा तालिबान एकदम सिटी में पहुंच गया, मैं वहां पे थी, मैं बाहर भी थी रोड पे फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, तो मैंने देखा लोगों में जो एक डर आ गया, कुछ तो सिविलियंस, जैसे अफगानिस्तान में होता है, दे आर लिविंग अ वॉर पिछले 20 साल से, तो वो अपने बंदूकें लेके निकल गए तालिबान को मारने के लिए। रोड पे तालिबान अपने व्हाइट फ्लैग्स और पिकअप ट्रक्स में एकदम से निकल गए, ग्रेनेड लॉन्चर्स और मशीन गन्स लेके। तो वो सीन काबुल का एकदम, मतलब उसके पिछले रात को भी, सैटरडे नाइट को भी मैं लोगों से मिली थी, कुछ कैफेज में हम गए थे, तभी भी नॉर्मल था, बट ये एकदम से कोलैप्स हो गया।
तो जब नैनी में आपने देखा कि एकदम से कोलैप्स हो गया, तो लोगों में आई एम श्योर काफी लोग डर भी गए होंगे, पर ऐसा भी देखा गया कि अफगान प्रेसिडेंट जो थे उनकी फोर्सेस ने फाइट बैक नहीं किया। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि वो जो सोल्जर्स थे, गवर्नमेंट के सोल्जर्स थे, वो ऑलरेडी तालिबान के साथ मिले हुए थे? क्या ऐसा कहा जा सकता है?
देखिए, मैं बोलूंगी ये एक काइंड ऑफ डिस्कोर्स चला है, सॉरी टू से, वेस्टर्न मीडिया के थ्रू से, बट ये एक तरह से सच है. मैं नहीं कह रही ये सच नहीं है, बट सच ये भी है कि वो ये सब करने में मजबूर हुए. दे वर फोर्स टू डू दैट बिकॉज वहां पे अगर आप लोगों से मिलेंगे, इवन अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलेंगे, वो भी आपको कहेंगे कि अशरफ गनी गवर्नमेंट कितनी करप्टेड थी. उनका करप्शन इतना ज्यादा था कि सोल्जर्स में एक वो आ गया था कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने जान से खेल के जो तालिबान से हम लगातार फाइट कर रहे हैं. उनको
जी
सैलरीज नहीं मिलती थी, उनको लीव्स नहीं मिलता था, उनको अपने फैमिलीज के पास जाने का परमिशन बिल्कुल नहीं था. वो कॉन्स्टेंटली कहीं कोने में किसी एक डेजर्ट में बैठ के किसी विलेज के आउटस्कर्ट्स में लड़े जा रहे हैं. नोबडी वाज देयर टू लुक आफ्टर देम. ये एक चीज है. दूसरा, जैसे कि आपको पता है, मैं मजारे शरीफ भी गई थी. जैसे ही मैं काबुल
जी
पहुंची, 10 तारीख को मैं मजारे शरीफ गई. उस दिन इंडियन कॉन्सुलेट भी वहां बंद हो गया. तब आ, 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 मजारे शरीफ के 3 किलोमीटर के बाहर ही तालिबान पहुंच गए थे. मैं पुले बुखरी करके एक जगह में गई थी जहां फाइटिंग चल रही थी, तो मैंने कुछ सोल्जर्स के साथ वहां जो फाइट कर रहे थे उनसे बात किया. उन्होंने कहा कि देखिए, हम तो पूरे जी जान से लड़ रहे हैं, लेकिन हम ये भी पूछते हैं कि हम मार किसे रहे हैं. ये तो हमारे ही लोग हैं, ये कोई बाहर से दुश्मन नहीं आया हुआ है.
जी
तालिबान हम लोग से एक है, बट
जी
हाँ, हमें ये पता है कि अफगानिस्तान एक डेमोक्रेसी है, हमें इसको बचा के रखना है. लेकिन हमें क्या मिला? और देखिए, आपको पता है साहिल, वहां पे जो है बहुत ज्यादा गरीबी है, तो वो एक सिचुएशन बन गई जहां पे उनको लगा कि हमें क्या मिला. तो अशरफ गनी गवर्नमेंट ने तो हमें कुछ दिया नहीं, तो चलिए देखते हैं अगर तालिबान ही हमें कुछ दे दे.
तो नैनीमा, आपने जब वहां के आवाम से बात की, जनता से बात की, तो आपको क्या लगा कि उनका रुख भी तालिबान के फेवर में है या वो भी उतने ही दुखी हैं?
नहीं, देखिए, जैसे मैंने कहा, लोगों में, अफगान फोर्सेस में बहुत ज्यादा एक हेट्रेड बैठ गया था फॉर अशरफ गनी गवर्नमेंट.
जी
जब मैं काबुल भी आई, काबुल में लगातार लोग सिर्फ यही बातें कर रहे थे कि ये प्रेसिडेंट रिजाइन कब करेगा, व्हेन विल ही स्टेप डाउन, एंड दैट स्टेप डाउन डिमांड वाज वेरी हाई.
नहीं, मैं जैसा कि हम जानते हैं कि अफगानिस्तान में हमारी इंडियन कम्युनिटी के भी काफी लोग रहते हैं, कुछ बिजनेसमैन भी रहते हैं, तो क्या आपकी उनसे बात हुई? उनका क्या रिएक्शन था?
देखिए, सिचुएशन तो वहां पे सबका एक समान है. इंडियन कम्युनिटी का तो खैर डर ही अलग है, बट जैसे कि मैंने आपको कहा, उनको पता नहीं था कि ये सिचुएशन कितना खराब हो सकता है. हमें से किसी को भी नहीं पता था. वो तो खैर वहां रहते हैं, तो उनके वहां पे अपने घर हैं, बिजनेस हैं. उनको लगा कि नहीं, इतनी भी खराब नहीं होगी सिचुएशन कि अचानक 20 साल फाइटिंग के बाद यूएस फोर्सेस अचानक चले जाए तो काबुल एकदम से गिर जाएगा और इंडियन एम्बेसी भी वहां से अचानक से चली जाएगी. ये भी उनके लिए काफी शॉक था.
अभी आपके हिसाब से कितने भारतीय होंगे जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं और इवैक्यूएशन के लिए वेट कर रहे हैं?
देखिए, जब मेरा इवैक्यूएशन हुआ था, तब मुझे पता चला था अराउंड 400 से 450 लोग तभी भी फंसे हैं. ये तो मैं आई एम गोइंग बाय कन्वेंशनल फिगर्स. आई एम श्योर उसमें से ज्यादा होंगे. बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, तो इसलिए पता भी नहीं है वो कौन से कोने में अफगानिस्तान में फंसे होंगे. सब तो काबुल में नहीं है,
हाँ
बहुत
जी
लोग प्रोविंसेस से भी है. इंडियन कम्युनिटी वहां पे, आई एम श्योर इट विल बी इन ह्यूज नंबर्स जो वहां पे फंसे होंगे. मे बी वो आना चाहते हैं, बट अभी तो एयरपोर्ट, काबुल एयरपोर्ट पहुंचना ही इज सो डिफिकल्ट. अगर वो काबुल के बाहर है तो उनके लिए काबुल आना, फिर एयरपोर्ट पहुंचना, फिर इवैक्यूएशन फ्लाइट में चढ़ना इज अ ह्यूमंगस टास्क. सो आई एम श्योर वो सब अभी जहां पे हैं वहीं पे रहेंगे, बट इट्स अ ह्यूज ह्यूज चैलेंज.
जी नैनीमा, मेरा आपसे ये आखिरी सवाल है कि अफगानिस्तान की नई सरकार बनी तो भारत ने भी काफी कंट्रीब्यूशन किया था, भारत ने वहां की शायद पार्लियामेंट को भी बनाया था, और अब उनके लोगों को, उनकी फोर्सेस को ट्रेनिंग भी दी गई थी और बाकी रिसोर्सेस भी सप्लाई किए गए थे। अब जब सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई है, तो इससे हमारी साउथ एशिया की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे कितना फर्क पड़ेगा और इसका भारत के लिए क्या मतलब है?
देखिए साहिल, अगर आप आपने बिल्कुल सही कहा है, इंडिया का इन्वेस्टमेंट विद इन साउथ एशियन कंट्रीज हैज बीन द लार्जेस्ट व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट एड. सो इट्स अबाउट एनीवेयर बिटवीन 3 to 5 billion dollars. हमने सलमा डैम बनाया, पार्लियामेंट बिल्डिंग और भी बहुत सारी छोटी छोटी काफी प्रोजेक्ट्स इंडिया ने वहां डेवलप करी है. कुछ रिपोर्ट शुरू में आई थी कि शायद ये सब इन्वेस्टमेंट्स में दे विल बी इम्पैक्टेड, तालिबान उनको तोड़ देगा. ऐसा कुछ हुआ भी नहीं और मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि इंडिया का एक अलग तरीके का वहाँ पे इमेज है. लोग इंडिया को बहुत पसंद करते, इंडिया के लोगों को बहुत पसंद करते. और मैं ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैंने खुद वहाँ महसूस किया, मैंने फील किया है. अकेले एक वुमन जर्नलिस्ट होके वहाँ कवर किया है तो मैंने देखा है कि लोग जैसे ही सुनते हैं अच्छा आप इंडिया से आए हैं, उनका उनका एक अलग तरीका होता है आपसे बिहेव करने
जी,
का.
मैं आपके आर्टिकल में भी पढ़ रहा था तो आपने लिखा था कि जब आप एयरपोर्ट पे वेट कर रही थी तो दो बच्चियां आपके पास आई तो उन्होंने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के बारे में बात करना शुरू कर दिया आपसे.
जी बिल्कुल, मतलब वहां पे बॉलीवुड का जो नाम है शायद हमें इंडिया में रह के इतना नहीं पता. मैं तो खैर इतने फिल्में देखती नहीं हूँ, बट हाँ मैंने उनको अपना इंस्टाग्राम, मतलब शाहरुख खान का इंस्टाग्राम पेज दीपिका पादुकोण का दिखाया तो वो बहुत एक्साइटेड हो गई. तो एक कहीं ना कहीं उनमें यह है कि इंडिया हमारा दोस्त है, इंडिया हमें कभी छोड़ के जा नहीं सकता चाहे सिचुएशन जितनी खराब है. तो आई थिंक वो चीज गवर्नमेंट को एक बार दिमाग में रखनी चाहिए बिफोर यू कम्प्लीटली एक्सिट फ्रॉम दैट कंट्री. हमने देखा है कहीं ना कहीं इंडिया के लिए द बिगेस्ट चैलेंज विल बी इन ऑल ऑफ दीज हाउ यू यू नो प्ले द पाकिस्तान फैक्टर. जहां तक सवाल है पाकिस्तान और तालिबान के रिलेशनशिप, पाकिस्तान खुद हमेशा इसको डिनाई किया है, बट हमको पता है कि ये जो पूरी पीस डील हुई यूएस और तालिबान के बीच, उसमें पाकिस्तान हैज बीन द मेन फैसिलिटेटर. इंडिया और पाकिस्तान में बातचीत बिल्कुल बंद है, विच अगर आप देखेंगे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अभी होनी नहीं चाहिए, स्पेशली अफगानिस्तान की सिचुएशन को देखते हुए. आई थिंक इंडिया नीड्स टू ओपन सम काइंड ऑफ यू नो बैक चैनल, तो खैर चल ही रही है बिटवीन इंडिया पाकिस्तान. एक बार उसको डायलॉग फॉर्म में लाना चाहिए कि अफगानिस्तान को सिचुएशन रखते हुए अपनी खुद की सिक्योरिटी सिचुएशन, जहां हम भी यू नो कश्मीर को लेके इट्स अ सेंसिटिव मैटर, उसको कैसे दोनों को बैलेंस करेंगे कीपिंग इन माइंड द लार्जर वेलफेयर ऑफ पीपल.
जी, आने वाला समय बेहद चुनौतीपूर्ण है भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए. हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.
शुक्रिया साहिल.
SBS हिंदी, हमारी कहानियां फेसबुक पर.